My dear young sisters,
मेरे प्यारे जवान भाइयों, दुनिया भर में मैं हबारी हूँ और सम्मानित हूँ आज आपके साथ उपस्थित होने के लिए. प्रधान मानसून और गिरजाघर के सभी नेता तुमसे प्रेम करते हैं. हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए विश्वास पर आनंदित होते हैं. बातें हुए वर्षों में मैंने कई सुंदर भाषाओं को ज्ञान मिला. हर एक लगाओ और ध्यान देने होगी. उदाहरण के तौर पर हर भाषण में एक वाक्य होता है जो दुनिया के कोई और वाक्य के चमत्कारी और बाधाओं से भरा होता है. वो वाक्य है एक समय के बाता. क्या वो चमत्कारी शब्द है? नहीं, एक समय का बाता हमसे उसका वादा करता है. चौकी और प्रेम भरी एक कहानी, राजकुमारियों और राजकुमारों के एक कहानी. इसमें शामिल होंगे हिम्मत, आशा और आनंद, प्रेम की कहानी. ऐसी की कहानियों में दयालु कमीने से विजय पाता है और अच्छा बुरे से विजय पाता है. मगर शायद सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ जब हम आखिरी पढ़ने में पर जाते हैं और हमारी आखिरी अंतिम लाइन पर आते हैं और वो उस समय के बाद हमेशा खुशी से जिए. क्या वो हम सब के चाहते नहीं हम अपने की कहानियों के नायक और नायिकाएं बने और अंत में हमेशा खुशी से जिए. आज मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत असाधारण चीज पर ले जाना चाहता हूँ. तुम्हारे जवान महिलाओं की पर्सनल प्रोग्रेस की पुस्तक के पहले पढ़ने पर उन्हें ये शब्द मिलेंगे, तुम स्वर्ग पिता की एक प्रिय पुत्री हो. इस खास समय में धरती पर आने के लिए तैयार की गई हो एक पवित्र और विशाल लक्ष्य के लिए. वो शब्द सच्चा है. वो एक कहानी में नहीं बनाई गई है. क्या ये जाना ध्यान देने योग्य नहीं है कि कमरा आनंद स्वर्ग के पिता तुम्हें जानता, तुम्हें सुनता, तुम्हारे ख्याल कर रखता और तुमसे एक आनंद प्रेम के साथ प्रेम करता है. वास्तव में तुम्हारे लिए उनका प्रेम इतना महान है कि उसने तुम्हें इस मरणशील जीवन एक समय के बाता को एक बहुमूल्य उपहार के रूप में दिया है. तुम्हारे अपने संपूर्ण कहानी के साथ जो सच्चाई है और जो कि मुसीबत और महानता, उदारता, हिम्मत और प्रेम का मौके से भरी है और सबसे विशाल है, वो तुम्हें एक उपहार देता है जो अमोल है और समझ से भारी है. स्वर्ग के पिता तुम्हें सबसे महान उपहार देता है जिसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं, आनंद जीवन और तुम्हारे खुद से हमेशा की खुशहाली का मौका और आनंद आशीर्वाद. मगर ऐसा आशीर्वाद कोई मोल के नहीं मिलता है. वो तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम्हें उसकी चाहत है. वो मिलता है इस समझने के से कि आप कौन हैं और कि तुम्हें क्या बनना है, ऐसे उपहार के लिए योग्य रहने के लिए. मुसीबत यात्रा का भाग है. इस कहानी में मुख्य किरदार शायद एक राजकुमारी का एक गवाई की थी. वो शायद एक कन्या का एक ढूंढने वाली स्त्री है. तुमने एक बात सामने पड़ोगे, उन्होंने दुर्भाग्य से विजय पाना है. सिंड्रेला को अपनी कामिनी सौतेली माता और बुरे सौतेली बहनों का जलना था. ब्यूटी एंड द बीस्ट में बेल बनती है कि डरावने दिखने वाले पशु की अपने पिता को बचाने के लिए वो अपना घर और परिवार बलिदान कर देती है. वो कहानी रंपेलस्टिल्स्किन में एक गरीब मिल कार्यकार राज्य से बड़ा करता है कि उसकी बेटी से एक सिक को सोना में स्पिन कर सकती है. राजा तुरंत उसके बुलाने भेजती है और उसके एक कमरे में बंद कर देता है एक कीप. बाद में इस कहानी में वो अपना पहलता बच्चा खोने के खतरे का सामना करती है जब उसे चमत्कारी पशु का नाम पहुंचा जाता है। इन सभी कहानियों में सिंड्रेला बेल और कारीगर की बेटी को दुख और दुर्भाग्य से अनुभव करना पड़ा उनके हमेशा की खुशहाली तक पहुंचाने के लिए। उसके बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने खुद के बकावा दुर्भाग्य और दुख के कठिन समय से ना गुजरना पड़ा। उनके एक समय एक के बाद था और हमेशा की खुशहाली के बीच उन सबको बहुत दुर्भाग्य अनुभव करना पड़ा। क्यों सबको दुख और संकट अनुभव करना पड़ता है? क्यों हम सिर्फ खुशहाली और शांति में नहीं जी सकते जहां हर दिन आश्चर्य खुशी और प्रेम से भरा हो? धर्मशास्त्र में बतलाता है हर एक कामों में विरोध स्वाभाविक है क्योंकि उसके बिना हम मीठा और कड़वा का अंतर नहीं जान पाते। क्या लंबी दौड़ लगाने वाली महिला दौड़ के अंत के जीत की खुशी महसूस कर सकती है अगर उसने घंटों से मेहनत की पीड़ा ना सही होता? क्या वो पियानो बारक हो खुशी महसूस कर सकती कि जो संगीत के एक कठिन भाग में महार होने में लगा बिना लंबे समय के अभ्यास की? कहानियों में जैसे जीवन में है भी दुर्भाग्य हमें ऐसी बातें सिखलाता है कि क्यों किसी और तरीके से नहीं जान सकते। दुर्भाग्य के लिप्रचतर की गहराई को बढ़ाने में मदद करता है जो कई और से नहीं आता है। हमारे स्वर्ग प्रेमी स्वर्ग के पिता ने हमें एक चेतावनी और मुसीबत भरे दुनिया में रखा है ताकि हम विरोध द्वारा समझदारी से बलवान बने और खुशहाली अनुभव करें। मुझे एक व्यक्तिगत अनुभव बताने के मौका देने जो मेरे साथ घटा जब मैं युवा था, जब हमारे परिवार फ्रैंकफर्ट जर्मनी में गिरजा कर रहा था। जब परिवार को प्रचारण ने एक नए परिवार को हमारी सभा में लाई जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। वो एक माता थी जिसके पास दो सुंदर पुत्रियां थी। मैंने सोचा कि यह प्रचारक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैंने गौर किया उसके पुत्री पर जिसके सुंदर काले बाल और बड़े भूरे आंखें। उसके नाम था हैरियत और मैं सोचता हूँ मैं उसे प्रेम करना लगा उस पहले से चंद से जब मेरी नजरें उस पर पड़ी। दुर्भाग्य से यह सुंदर जवान महिला मेरे प्रति वैसा नहीं महसूस कर रहा थी। उसके पास कई जवान पुरुषे थे जो उसे जान पहचान बढ़ाना चाहते थे और मैं सोचने लगा कि वो मुझे कभी फिर सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा समझेगी, मगर उसे मैं रखा नहीं। मैंने तरीके ढूंढे वहाँ होने को जहाँ वो थी। जब मैं प्रभु बोझ लेकर जाता मैं देख लेता कि मैं उस जगह पर हूँ कि मैं ही उसे प्रभु बोझ दूँ। जब गिरजाघर खास गतिविधियाँ होती मैं बाइक पर हैरियत के घर तक जाता और दरवाजे का घंटे बजाता। हैरियत के माता ज्यादातर आती थी दरवाजा खोलने। सच में वो अपने अपार्टमेंट जो चौथे मंजिल पर थे को रसोई की खिड़की खोल कर पूछती मुझे क्या चाहिए था। मैं पूछता कि क्या हैरियत मेरे बाइसिकल पर गिरजाघर जाना पसंद करेगी। हैरियत का माता कहती नहीं, वो बाद में आएंगी, मगर मैं खुशी से तुम्हारे साथ गिरजाघर जाऊंगी। ये वो नहीं जो मेरे मन में था, मगर मैं कैसे इनकार कर सकता। अंत फिर हम गिरजाघर जाते। मुझे कबूलना है कि मेरे पास एक बहुत प्रभावपूर्ण बाइक थी रास्तों के लिए। हैरियत के माता ऊपर के लोहे पर बैठी थी मेरे आगे और मैं सबसे खड़ी वाले। भाड़े का चालक बनने की कोशिश कर रहा था उबड़ खबड़ रास्तों में। समय बीता गया। सुंदर हैरियत अन्य जवान पुरुषों से मिलती रही। ऐसा लगता था कि मैं उसके साथ कोई प्रगति नहीं कर रही था। क्या मैं निराश था? हाँ। क्या मुझे हरा दिया गया था? हर किस नहीं। दरअसल पिछले बातें याद करते हुए कोई पीड़ा नहीं होती अपने सपनों के लड़की के माते के साथ अच्छे संबंध रखने से। वर्षों बाद जब मैंने वायुसेना में अपना अभ्यास संपन्न कर दिया तो एक लड़ाई के विमान चालक के रूप में मैंने एक आधुनिक चमत्कार अनुभव किया एरियट के बर्तों में मेरे रजने के जवाब में। एक दिन उन्होंने कहा, डेटा, तुम इन बीतों वर्षों में काफ़ी बढ़ हो गए हो। उसके बाद मैं जल्द कदम उठाए और कुछ ही महीनों में उस महिला से विवाह कर लिया जिसको पहले बार देखा था। मैंने उसे प्रेम कर लिया था। वो कार्य आसान नहीं था, उसमें तड़पने और निराशा के चैन भी थे, मगर अंत में मेरी खुशी पूर्ण हुई और अभी भी कहीं ज्यादा। मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों, तुम्हें जानने की जरूरत है कि तुम अपना खुद का दुर्भाग्य अनुभव करोगे। कोई भी छुटा नहीं, तुम तड़पोगे, बकावा का सामना करोगे और गलतियां करोगे। तुम खुद को सीखोगे जो हर नायिका से सीखा है। वो दुर्भाग्य के प्रति तुम्हारा व्यवहार है, ना कि दुर्भाग्य खुद जो है कैसा तुम्हारे जीवन की कहानी होगी। वहाँ हो है तुम्हारे मध्य में हालांकि जवान जिन्होंने शोक और दुख के पूरे माप को झेल लिया है। मेरा हृदय तुम्हारे प्रति दया और प्रेम से भर गया है। कितने प्यार से तो तुम गिरजाघर के लिए, कितने परम प्रिय हो तुम अपने स्वर्ग पिता के लिए। ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, देवदूत तुम्हारा देखरेख करेंगे। तुम शायद महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे दुख की गहराई नहीं जानता। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह समझता है। उसने हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा तड़पा है और उसे यह हमारे लिए किया, उसने यह तुम्हारे लिए किया। तुम अकेला नहीं हो। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा बोझ सहने लायक नहीं है, अपना हृदय अपने स्वर्ग पिता के समक्ष रखो और वो तुम्हें थमाएगा और आशीर्वाद देगा। वो तुमसे कहता है, जैसे हो जोसेफ स्मिथ से कहा था, कि तुम्हारा दुर्भाग्य और मुसीबत थोड़ी ही समय के लिए होगा और फिर अगर तुम उसे अच्छाई तरह जल पाओगे, परमेश्वर तुम्हें उन्नत करेगा। दुर्भाग्य को झेलने की ही हार्य नहीं जिसे करने से तुम्हें कुशल जीवन अनुभव करोगे। मुझे दोहराने दो, जैसे कैसे तुम दुर्भाग्य और बकावे का सामना करते हो, निश्चय करने वाला फैक्टर है ये जानने के लिए कि यह तुम अपने हमेशा के लिए खुशहाली तक पहुँचोगे। मेरे प्यारे छोटे बहनों, तुम जो जानते हो कि सच्चाई है पर टिके रहो। जहाँ भी तुम देखते हो आज तुम्हें खुशहाली की बाधाएं पाओगी। पत्रिकाओं में विज्ञापन संपूर्ण खुशहाली का वादा करते हैं कि अगर हम सिर्फ ये एक कपड़ा, शैम्पू या मेकअप खरीद लें। कुछ जनसाचार मध्यम बुरे कार्य करने वालों को हो जो शारीरिक भावनाओं को लुभावना बना देती है। ऐसा दुनिया में जहाँ बुरे को सच्चा और सच्चे को बुरा प्रस्तुत किया जाता है, कभी कभी सच्चा जानना कठिन हो जाता है। कुछ तरह से ये लिटिल रेड राइडिंग हुड के जब तुम ये नहीं कर पाते हैं कि वो एक देख रहो कि या प्यारे दादी माँ है या एक खतरी भेड़िया है। मेरा काम था दुनिया के किसी भी भाग से एक बड़े हवाई जहाज को सुरक्षित हमारे चुने हुए मंजिल तक पहुंचाना। मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैं न्यूयॉर्क से रोम जाना चाहते हैं तो मुझे पहले पूरब की ओर उड़ान भरनी पड़ेगी। अगर कोई मुझसे कहे कि अगर मुझे दक्षिण की ओर जाना है, मैं जानता था कि वो उनके बातों में कोई सच्चाई नहीं है। किसी भी तरह के समझाना बुझाना, चपलूसी घुस देना या धमकियां मुझे यकीन दिला नहीं थी कि दक्षिण दिशा में उड़ान भरना मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, मैं जानता था। सच्चा यह है, परमेश्वर जानता है कैसे वहां पहुंचना जाएगा, और उसने तुम्हारे लिए एक नक्शा बनाया है। वो मार्ग जानता है, वो तुम्हारा स्वर्ग के पिता है, जो तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी खुशहाली तलाशता है। वो एक अच्छा और पवित्र पिता के संपूर्ण प्रेम से चलता है कि तुम अपना दिव्य मंजिल तक पहुंचो। नक्शा सभी के लिए उपलब्ध है, वो साफ साफ बतलाता है क्या करना है और कहाँ जाना है। मसीह के पास अपने का आने के संघर्ष कर रहना है, परमेश्वर की गवाह बनना चाहते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने स्वर्ग के पिता पर पर्याप्त भरोसा करना है, उनकी योजना पर अमल करने के लिए। फिर भी सब नक्शे पर नहीं चलेंगे, वो शायद उसके देखेंगे, वो शायद उसे सोचेंगे, चाहे सच भी, मगर वो दिव्य निर्देशन पर नहीं चलते। कई विश्वास करते हैं कि कोई भी रास्ता उन्हें एक हमेशा की खुशहाली तक पहुंचाएंगे। कुछ शायद क्रोधित भी होंगे जब अन्य लोग को जो मर्ज जानते हैं उनकी मदद करना चलेंगे। वो सोचते हैं कि ऐसा सलाह पुरानी आज से संबंध नहीं करता। बहनों, वो गलत सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि कभी कभी कुछ लोग आश्चर्य करते होंगे कि वो क्यों गिरजाघर सभाओं में भाग लेते हैं, क्या वो अवश्य कि धर्मशास्त्र लगातार पढ़े। ये है मेरा जवाब, तुम ये सब करते हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए परमेश्वर का मार्ग का भाग है, और ये मार्ग तुम्हें तुम्हारे हमेशा की खुशहाली के मंजिल तक पहुंचाएंगे। हमेशा की खुशहाली सिर्फ परियों का कहानियों में नहीं मिलता, तुम हासिल कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए उपलब्ध है, मगर तुम्हें तुम्हारे स्वर्ग के पिता के नक्शे पर चलना पड़ेगा। बहनों, यीशु मसीह के सुसमाचार को अपनाओ, अपने पूरे दिल हिम्मत और मान से स्वर्ग पिता से प्रेम करना सीखो, अपने हृदय को शुद्धता से भर लो और अच्छाई से प्रेम करो, हमेशा अपने आप और औरों में सबसे उत्तम दिखलाने को कोशिश करो। जवान महिलाओं के आदर्शों को अपनाओ और उस पर कमल करने को सीखो। फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ में दिए गए कानून के अनुसार जियो। ये कानून तुम्हें मार्गदर्शन और निर्देश करेंगे तुम्हारे हमेशा की खुशहाली तक की, और इन कानून के जीने से तुम तैयार होगे मंदिर के पवित्र बाधक को बनने के लिए, और अच्छाई का अपना खुद का देन स्थापित करोगे अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों में। पवित्र स्थानों पर खड़े रहो और अटल रहो, चाहे कितनी भी बकावे या कठिनाइयां आए, और भविष्य की पीड़ाएं आभारी रहेंगे तुम्हारे प्रति, और नाम की प्रशंसा करेंगे तुम्हारे हिम्मत और विश्वासीपन के लिए जीवन के इस नवजात समय पर। मेरे प्यारे जवान भाइयों, तुम जो सच और धार्मिकता के लिए खड़े हो, तुम जो बपतिस्मा के पानी में दाखिल हुए और प्रभु के मार्ग पर चलते हो, हमारे स्वर्ग पिता ने वादा किया है कि तुम गिर जैसे उड़ोगे, तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं, और चलोगे और गिरोगे नहीं, तुम्हें धोखा नहीं दिया जाएगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा और तुम्हें प्रगति करेगा, नरक के तक तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे, और प्रभु परमेश्वर अंधकार से शक्तियों को तुम्हारे पास से हाथ देगा, और स्वर्ग को तुम्हारे हित में उनकी नाम के महिमा में मिलेंगे। बहनों, हम तुमसे प्रेम करता है, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, बलवान बनो और हिम्मत बांध लो, तुम वास्तव में शही आत्मिक पुत्रियों का हो, महान भविष्य की तुम राज कुमारियों है रानियों बनने के लिए, तुम्हारी खुद की आश्चर्यजनक कहानी शुरू हो चुकी है, तुम्हारा एक समय के बाद था अभी है। प्रभु यीशु मसीह के देवदूत के रूप में मैं तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद छोड़ा हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार के आदर्शों और सिद्धांतों को अपनाओगे और उन पर अमल करोगे, तुम तैयार रहोगे घर और परिवार को मजबूत करने के लिए, पवित्र वादों को बनने और निभाने के लिए, मंदिर के धर्म विधियों को अपनाने के लिए और उन्नत जीवन के आशीर्वाद से आराम पाने के लिए। और वो दिन आएगा जब तुम खुद के आश्चर्यजनक कहानी के अंतिम पन्ने को खोलेंगे, वहां तुम पढ़ोगे और अनुभव करोगे उन अभिष भरे और चमत्कारी शब्दों की संतुष्टि को, और वो हमेशा खुशहाली में जाएंगे। इस मसीह के नाम में, आमीन।